ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகுண நிலை அவ்யக்தம் நாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார் प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ विचार कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र जो आत्मज्ञ पुरुष है, आत्मा के संबंध में विचार करने वाले आत्मवेता, आत्मा को जानने वाले उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए ये संपूर्ण जगत स्वस्वरूप आत्मा में दिखता है, आत्मवत जगत को जानकर और अनात्म मिथ्यापन को जगत से अलग कर स्वस्वरूप अपने आत्मा का पालन करते हुए संसार में मां कश्च स्विधनम, अर्थात यह जो धन है, जगत रूपी धन, यह किसी का नहीं, न अपना अपना है, न जिसे हम दूसरे का कहते हैं, न वो दूसरे का है, वह तो केवल आत्मवत है, आत्मा है। इस प्रकार आत्मनिष्ठ भाव से जगत में आत्मा का पालन करते हैं, तक्तेन भुंजिता, पालन करते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो उस आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, उसके लिए श्रुति कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिष्यामि सद्गुण समा, कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, जीने की इच्छा करो, पर कैसे जियो, कर्म करते हुए जियो। और कर्म कैसे हो, बोले कर्म में, कर्म के फल में, कर्म के प्रति आकांक्षा न हो, स्प्रसा उसकी चाह न हो, नमे कर्म लिप्यते न रह, कर्म में लिपायमान न हो, कर्म करता हुआ कर्म से रहित होकर, कर्ता होते हुए भी अकर्ता बनकर, अकर्ता होकर कर्म करे, दूसरा मार्ग। यदि ये दोनों नहीं है तो उन व्यक्तियों के लिए कहा गया कि वो आत्मघाती लोग हैं। और उनकी स्थिति क्या होती है, बोले उनकी स्थिति ये होती है असूरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता, वह लोग जो न तो ज्ञान को और न ही कर्म को, इन दोनों को नहीं समझते हैं, उन लोगों की स्थिति जो केवल भोग पराण है, असूरिया नामते लोका इंद्री, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के भोगों में जो दिन रात लिप्त रहते हैं, वो व्यक्ति आत्म स्वरूप को न जानने के कारण शरीर को ही सब कुछ मान करके, शरीर के जन्म को जन्म, शरीर की मृत्यु को मृत्यु, वो शरीर के सुख से सुखी, शरीर के दुख से दुखी, शरीर के लाभ से लाभ, शरीर की हानि से हानि, इस प्रकार अनात्म धर्म जो इंद्रिय धर्म है, उस इंद्रिय धर्म को, मन के धर्म को, बुद्धि के धर्म को, चित्त के धर्म को अपने स्वरूप में कल्पित कर, मान करके वो मान थोप देते हैं, उस पर आरोपित कर देते हैं। जो आत्मा अत्यंत, मेरी आत्मा, उसकी, उसने ऐसी बात मेरे को कही कि बस मेरी आत्मा जल गई। बहुत से लोग कहते हैं उसकी बात ने तो बस मेरे को जला दिया, और उसने इतनी अच्छी बात कही कि बस मेरी आत्मा वाग वाग हो गई, प्रसन्न हो गई। बहुत से लोग बातों में कहते हैं ना, अरे ऐसी बात मत कहो कि उसकी आत्मा दुखे। तो ये जो हम आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं, वो जो कर्ता भोक्ता बनकर इस शरीर में जीव बैठा हुआ ना, जो जीव है, उस जीव को हमने आत्मा की संज्ञा दे दी, उसे आत्मा समझ लिया। वस्तुतः जीव और आत्मा क्या है? बोले जिसमें कर्ता और भोक्तापन है वह जीव है, जो कर्ता भोक्ता की उपाधि से रहित निरुपाधिक स्वरूप है वो तो सर्वव्यापी आत्मा है। तो अज्ञानतावश वह अपने आप को कर्ता भोक्ता का धर्म अपने स्वरूप आत्मा में मान लेता है, आरोपित कर देता है। ऐसा आरोपित करने वाला जो व्यक्ति है, इसे इसके लिए कहा कि ये तो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है। और इस आत्महत्यारे को धकेल दिया जाता है। बोले कहाँ धकेल दिया जाता है? इंद्रियों के, अर्थात जहाँ सूर्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में धकेल दिया जाता है। अर्थात अज्ञानता में फिर से पुनरभि पुनरभि जन्मनम पुनरभि मरणम, जन्म मरणादि के चक्र में वो जीव घूमता रहता है। इसलिए ये आत्मघात सबसे बड़ा दोष माना गया है ना। मैं कई बार कहती हूँ, मैं को देह समझना यही सबसे बड़ा पाप है और यही सारे पापों का बाप है। देह को मैं समझना ये सबसे बड़ा पाप है और यही सारे पापों का बाप है। सारे अनर्थ कहाँ से हो रहे? कभी सोचो कि हम कहाँ अनर्थ कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा अनर्थ अपने आप के साथ कर रहे हैं। अपने को न पहचानने के कारण हमने अपने आप को क्या समझ लिया है? बोले हमने ये समझ कर बैठ गए हैं कि मैं शरीर हूँ। कोई हमसे पूछे तुम कौन हो, तो बड़ी जल्दी से उत्तर देते हैं, मैं अमुक नाम हूँ। जो शरीर को संबोधित करने के लिए नाम दिया था, वो नाम मैंने मैं समझ लिया। और जो ये शरीर मुझे मिला था, इस शरीर को मैंने मैं समझ लिया। ये शरीर से, इस शरीर की जाति मेरी है, इसका लिंग मेरा है। ये अच्छा मेरा कहते हुए हम उसे मैं मान लेते हैं। कहते हम मेरा है पर मान हम मैं लेते हैं। मेरा कहते हुए जिस जिस को भी हम देखते हैं उसको क्या मान लेते हैं? मैं मान लेते हैं। मेरा को हमने मैं समझ लिया है। बस हमसे ये अनर्थ हो रहा है। और इस अनर्थ को यदि हम दूर नहीं किए, इस अनर्थ से अपने आप को नहीं बचाए, तो परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम यही होगा कि हमें अंधेरे में जहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तास्ते प्रतिज्ञा भी गच्छति ये के चात्महनो जना। जो आत्महन जन है अर्थात आत्मघाती जन है, उन जिनको अपने अपने कर्मों के अनुसार यानी कि भोगों को भोगता हुआ कर्मानुसार अपने को कर्ता मानकर किया हुआ कर्म उन भोगों को भोगने के लिए फिर से उसे भोग वासनाओं के कारण उसे जन्म मृत्यु में जाना पड़ेगा, जन्मना मरना पड़ेगा। तब श्रुति चौथे मंत्र से हमें ये बताना चाहती है, माने जो विषयिक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उन्हें जहाँ आत्मघाती कहकर श्रुति ने उसकी निंदा की, निंदा के पात्र हैं वो, निंदनीय हैं। बोले कौन? जो आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं। विशुद्ध तत्व आत्मा को जन्मने वाला, मरने वाला, समझने वाले अन्य का धर्म अन्य पर आरोपित कर देते हैं। ये धर्माध्यास भी इसको कहते हैं। धर्मा ध्यास, उसके जैसे ये कैसा आरोपित कर दिया गया, ऐसी भ्रांति हो गई। बोले कैसी हो गई, जैसे आग में भगोना भर के हमने पानी रख दिया और वो थोड़ी देर में गर्म हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, पानी गर्म हो गया है। तो पानी बिल्कुल गर्म हो गया है। अब थोड़ी देर सोचो कि पानी का स्वभाव गर्म है क्या, पानी गर्म होता है क्या, पानी को अग्नि के संग से, अग्नि का धर्म उस जल में उतर आया। और ये किसके कारण हुआ, बोले नजदीक के कारण, और उसके नजदीक होने के कारण, निकटता के कारण उसका धर्म उसमें आरोपित हो गया। और वो भी वास्तविक उसके अंदर नहीं है। थोड़ी देर बाद भगोने को, पानी को अग्नि से दूर रख लो, हटा दो, घंटे दो घंटे बाद उस पानी को आप देखेंगे बिल्कुल ठंडा होगा। बोले वो उसका स्वभाव तो शीतल ही था, जल स्वभाव से तो शीतल ही, वो गर्म होता ही नहीं है स्वभाव से, परंतु उसके साथ आने के कारण, उसका धर्म निकटता के कारण उसमें दिखाई पड़ा, तो धर्माध्यास हो गया। इसी प्रकार निकटता के कारण हम कहते हैं आज तो धर्माध्यास है, कि धर्माध्यास ये है कि जो जैसे उसका धर्म उस पर आ गया, उसी प्रकार हम शरीर के धर्म को, जीव के धर्म को आत्मा पर आरोपित कर देते हैं, और उससे हमें लगता है कि हमारी आत्मा दुखी हो गई, सुखी हो गई, ये एक भ्रांति होती है। तो इस प्रकार जिन्होंने आत्मा को और जीव को, जीव भाव को अपने से पृथक कर लिया, कर्तापन भोक्तापन की उपाधि को छोड़कर निरुपाधिक स्वरूप में स्थिति बन गई है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया ये आत्मा का स्वरूप क्या है। चौथे मंत्र से उपनिषद ये बताना चाहती है कि आत्मा का जो स्वरूप है, वह जो जन्म मरण से मुक्त आत्मघाती नहीं, वो आत्म तत्व कैसा है। उस आत्म तत्व के विषय में कहा, अनेक निर्देकम मनुषो जीवयो नैन देवा आपन ब्रुवन मर्षति तद धावंतो अनन्यो नित्येति तिष्ठति स्मिनंतम वो माति स्रवा दधाति। अर्थात अनेक अनेज देकम मनुषो जीवयो, अर्थात वह आत्मा जो अमर है, जो कभी मरती नहीं है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से विचलित होने वाली नहीं है। अनेज देकम मनुषयो जीवयो, वह अपरिणामी है, एक है, अपरिणामी है, उसमें कभी परिणाम परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो अपरिवर्तनीय, अविचलित, अडिग जिसे कहते हैं, दृढ़ एक, और एक है, मनसो मन से भी तीव्र गति वाला है। आत्मा मन से भी अधिक तीव्र गतिमान, मैंने गतिमान का अभिप्राय ये समझना चाहिए जैसे यतो यतो निश्चरति मनः, जहां जहां आपका मन पहुंचा, मन गया, और मन से जाने से पहले वहां कौन उपस्थित है, विचार करो। आत्मसत्ता तो, आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, तो जहां आपका मन पहुंचा वहां क्या आत्मा नहीं है, वो तो पूर्वक पहले से ही वहां व्याप्त है। तो वो एक होती हुई भी, अपरिणामी होती हुई भी, वो क्या है, बोले सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण मन जहां जाएगा, मन के पहुंचने से भी, मन से भी गतिवान कहने का अभिप्राय है, मन वहां पहुंचे, मन गतिशील है, मन गतिवान है, पर मन की गति से भी तीव्र और तेज, माने क्योंकि मन से पहले पूर्वत आत्मा वहां विद्यमान है, उपस्थित है। आत्मा किसी भी काल में कहीं भी अनुपस्थित नहीं होती कि वहां नहीं है। इसीलिए कहा गया है वो सर्व देश सर्व काल में है, सर्व देश में है, सर्व वस्तु में है। वो कब कहां किस वस्तु में किस देश में किस काल में नहीं है, अर्थात देश काल वस्तु का जो भेद, ये भेद वास्तविक भेद नहीं है, काल्पनिक भेद है, ऐसी कल्पना की गई है। तो इस कल्पना से परे, देश काल वस्तु के भेद से परे अभेद, जिसको कहा गया अपरिणामी, जिसका कोई परिणाम परिवर्तन नहीं है, इसके बाद ऐसा हो जैसे दूध का परिणाम, उसे दमाया गया, दही बनी, दही बनकर के उसमें से मथा गया, घी निकाला गया, वो परिणामी होता गया, बदलता गया। आत्मा ऐसी नहीं है, अपरिणामी, इसके बाद इसका परिणाम ही है। इसीलिए उसको कहा गया है अनेज देकम मनुष्यो जीवयो। वह आत्मा जो अपरिणामी है, एकम एक है। जैसे हम सब लोग बैठे हुए हैं तो हम यही कहेंगे कि आत्माओं, यदि आत्मा अनेक होगी तो उसके लिए बहुवचन होगा आत्माओं हो। पर हमेशा आप क्या सुनते हैं, आत्मा। वो एकमेवा अद्वितीयम्, वो एक है और अद्वितीय है, उस जैसी दूसरी नहीं है। इसलिए एक ही आत्मा, जिस प्रकार सूर्य एक है, उसका प्रतिबिंब अनेक है, अनेक घट में अनेक रूप में प्रतिबिंबित होने पर भी सूर्य तो एक ही है, पर हर घट में जितना जल है, सब जलाकाश में, जल में आकाश अलग 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 दिखाई देता है, पर वास्तव में ये घटोपाधि के कारण है, पर वास्तव में नहीं है। उसी प्रकार जीवोपाधि के कारण, जीवों की उपाधि के कारण ये देवोपाधि है, जीवोपाधि है, और इन उपाधि वश ये अनेकता दिखाई पड़ रही है। पर यदि उपाधि को आप अलग करें तो सब में व्यापक, सबके भीतर, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे वो धनी हो, चाहे अन्य वो गरीब हो, सबके भीतर, सब में व्यापक जो आत्मा है। अच्छा, यहाँ तक कि मेरी आत्मा और ब्रह्मा जी की आत्मा, मेरी आत्मा शिव की आत्मा, मेरी आत्मा भगवान विष्णु की आत्मा, यहाँ तक कि हम कहें कि राम जी की आत्मा और मेरी आत्मा, कृष्ण की आत्मा, मेरी आत्मा, हम दो आत्माएं थी। वो किसी भी काल में ये संभव नहीं, किसी भी काल में ये संभव, मेरे से पृथक, मैं से भिन्न, मैं से भिन्न, इसमें मैं और मेरा का झगड़ा है, मैं और मेरा का झगड़ा है। मैं कहते हैं आत्मा को, मेरा के जो है वो जीव है, माया है। मैं मेरा का झगड़ा, संसार में झगड़ा ही किस बात का है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। ये जो विवाद है, ये जो झगड़ा है, बोले किसके कारण है, केवल ना समझे, मैं और मेरा का थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाए। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है कि स्वामी रामतीर्थ विदेश गए यात्रा में, वहां उन्होंने शहर में प्रचार करवाया, किसी को भी परमात्मा से की मिलने की इच्छा हो तो वो मुझसे आकर के मिले, मैं उसे भगवान से मिलाऊंगा। वहां के अच्छे दार्शनिक लोग थे, उन्होंने सोचा कि भारत से साधु आया है और इस बात की घोषणा करता है कि किसी को भगवान से मिलना हो तो वो मुझसे आकर मिले, मेरे से संपर्क करे, मैं उसे परमात्मा से मिलाऊंगा। उसने सोचा कि ये परमात्मा से मिलाने की बात कर रहा तो जाके मिलना चाहिए। गया और जाकर स्वामी रामतीर्थ से कहा, महाराज मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। तो स्वामी रामतीर्थ कहने लगे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम ईश्वर से मिलना चाहते हो, बड़ी खुशी की बात है। तो अच्छा बताओ, मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा कि तुम ईश्वर से कैसे मिलना पसंद करोगे, कैसे मिलना पसंद करोगे। बोले हाँ, आप कैसे मिलना पसंद करें। किसी से मिलने के दो ही तरीके होते हैं, या तो स्वयं चल के उसके पास चले जाओ या उसे अपने पास बुला लो, इन दोनों में कौन सी बात तुम ज्यादा पसंद करोगे। उसने सोचा कि मैं ये कहता हूँ कि मैं चलता हूँ तो न जाने मेरे आगे कितनी शर्तें रख दी जाएंगी, शायद उन शर्तों को मैं पूरा न कर सकूं तो मेरा मिलना नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं ये कह दूं कि आप ईश्वर को मेरे पास बुला दो। तो स्वामी राम ने उसने कहा कि ईश्वर को मेरे पास मिला दीजिए, मुझसे मिला दीजिए। कहा कि ईश्वर तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल आतुर खड़े हैं, बड़ी प्रसन्नता है, और तुम उनसे मिलना चाहते हो इस बात की ईश्वर को भी प्रसन्नता है, इसलिए तुम एक काम करो कि ईश्वर तुम्हारे पास मिलने आवे और उन्हें कोई असुविधा न हो। उसके लिए एक काम करो कि तुम अपना एड्रेस बढ़िया से लिखा दो, पता ठीक ठीक लिखा दो। उस व्यक्ति ने जब अपना पता लिखवाया स्वामी जी को, तो उसने पता लिखाया कि ये मेरा नाम है, अपना नाम अमुक नाम। स्वामी जी ने वो नाम पढ़ा और नाम पढ़ के कहते हैं, पूछते हैं ये नाम किसका है। बोले महाराज मेरा है, ये नाम मेरा है, मेरा। तो उन्होंने कहा मिलना कौन चाहता है। वो मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। कहते हो तुम कि मैं मिलना मैं चाहता हूँ, नाम लिखाते हो मेरा, ये मेरा नाम है, और मिलना चाहता हूँ मैं, ये दो बात हो गई, एक मैं और एक मेरा। ये जो मैं और मेरे का फर्क है, दोनों में अंतर है। मिलना तुम चाहते हो और मिल कहते हो कि मैं मिलना चाहता हूँ, और नाम लिखाते हो मेरा, पता लिखाते हो मेरा। तो बताओ ईश्वर कैसे तुमसे मिले। बहुत समझ देर बाद उसे समझ में आए कि महाराज मैं और मेरा दो हैं। बोले हाँ, बस यही तो दो हैं। जिस दिन मैं मेरे का फर्क अंतर तुम्हें नजर आ जाएगा, ये दो बात। यशोदा जी को भगवान कृष्ण को बांधने के लिए दो ही अंगुल रस्सी की कमी पड़ी थी, केवल ये दो बात, मैं और मेरा। ये फर्क जिस दिन मालूम पड़ जाएगा, साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा हमारी बुद्धि में, इसमें कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी, उस दिन तुम स्वयं अपने स्वरूप में स्थित बन देख पाओगे कि ब्रह्मा भी तुमसे अलग नहीं है, विष्णु मेरी आत्मा यही शिव है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही नारायण है। अर्थात यही नारायण है कहने का अभिप्राय अहम ब्रह्मास्मि, जो आप कहते हैं मैं ही ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब एक कोई एक 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 देशी नहीं होता है, वो सार्वभौम सर्वदेशी है। ब्रह्म उसे नहीं कहते जो एक कोने में बैठा हुआ, एक शरीर में बैठा हुआ ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म तो वो है निरतिशय व्यापक, जिसमें ये असंख्य असंख्य ब्रह्मा, असंख्य असंख्य शिव, असंख्य असंख्य रुद्र, असंख्य असंख्य विष्णु, हर अखंड ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव, अनंत इंद्र, अनंत वरुण, अनंत कुबेर, अनंत देव, ये अनंता अनंत देव जिसकी कोई संख्या नहीं है, गिनती नहीं है, वो सब के सब सब अनंत रूपों में अपनी व्यापकता को, अपनी सार्वभौमता को, अपने ऐसे अपने व्यापक रूप का आप दर्शन कर रहे हैं। इस विश्व विराट में आप अपने आप को देख, ये विश्व विराट में आप, और आप में ये सारा विश्व विराट आपको नजर आ रहा है। जिस दिन आप अपनी आत्मा में स्व में स्थित हो जाएंगे, स्व का बोध हो जाएगा स्वस्वरूप में, तो इसलिए याद रखना मैं से अलग ब्रह्मा नहीं, मैं से अलग विष्णु नहीं, मैं से अलग कोई ये कहे कि ब्रह्मा भी चाहे शिव भी चाहे मैं इस आत्मा को मिटा दूं, तो उनको भी ये ताकत नहीं कि वो इसको मिटा सके। वो चाहे कि मैं हटा दूं, तो उन्हें भी ये ताकत नहीं कि हटा दूं। वो न हटा सकते न मिटा सकते, अर्थात न उसको अपने से दूर कर कोई चाहे, इसलिए आत्मा एक है, अपरिणामी है, एक है, उसका कोई परिणाम नहीं है, परिवर्तन उसमें नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है, अपरिणामी जिसको कहा। मनुष्यो जीवयो, अर्थात जो मन की गति से भी, मन से भी तीव्र, मन गतिशील है परंतु उसकी गति से भी तीव्र गतिवान से अभिप्राय है कि वह सब जगह सर्व देश में सर्व वस्तु में सर्व काल में वो आत्मा का सूक्ष्माति सूक्ष्म में और महान से महत्तर में, ब्रह्मादि शिव से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु के अंदर भी वही आत्म सखियों की वो व्याप, यदि अणु में नहीं होगा तो वो व्यापक नहीं कहलाएगा। मेरे से सृष्टि के एक उसको हटाना भी चाहे ना, अलग भी करना चाहे, वो नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। इसलिए ये सकल सृष्टि ईश्वर से ब्रह्म से कभी भिन्न नहीं हो सकती, अपरिणामी एक जिसको कहा गया है। आत्मा को देवता भी